ओम शांति। एक अत्यंत धार्मिक बिल्ली थी जो कि पूजा पाठ नित्य करती थी, माला जपती थी, बीच बीच में शास्त्रों का गहन अध्ययन भी करती थी। सात्विक जीवन था, दिन में शाकाहारी थी परंतु रात में मांसाहारी बन जाती थी। एक घर में वो रहती थी और वहां के लोग उसे बहुत प्यार भी करते थे, परंतु एक दिन एक विलक्षण घटना घटी। घर के लोग एक तोता ले आए और उस तोते को एक पिंजरे में लटका दिया। जब वो तोता गाता था तो बिल्ली को बहुत दर्द होता था। उसकी आवाज बड़ी सुंदर थी, मधुर थी, परंतु जितना ध्यान बिल्ली को अब तक मिलता था वो अब कम मिलने लगा था, क्योंकि कोई दूसरा मुझसे आगे जा रहा था और जब कोई दूसरा आगे जाता है तो अंदर पीड़ा होती है। वैसी ही पीड़ा उस बिल्ली को भी हुई। जब जब वो तोता गाता बिल्ली को बड़ा दर्द होता। एक रात बिल्ली ने सोचा, ये तोता बहुत उपद्रवी है, इसके जीवन का अंत ही कर देना अच्छा है। और जब रात सब सो गए थे तो बिल्ली ने उस पिंजरे में झपटा मारा, उसे नोच लिया और बड़ी बेरहमी से उसको बाहर निकाला, सारे दाग खून के जमीन पर, और वो तोता मर गया। सुबह जब हुई और घर वाले उठे तो सबने बहुत गुस्सा किया और बिल्ली की बहुत पिटाई हुई। बिल्ली को भी बहुत दुख हुआ, इस बात का नहीं कि तोता मर गया है, इस बात का कि जिस विधि से मारा वो विधि गलत थी। कुछ दिनों के बाद घर वाले दूसरा तोता ले आए। अब उसने सोचा कि जैसे पहले किया था वैसे नहीं करना चाहिए। उस बिल्ली ने हाथ डाला रात को और पूरा के पूरा तोता खा गई। उसको निचोड़ा नहीं, नोचा नहीं। दूसरे दिन सुबह जब सब घर वालों को पता चला फिर बिल्ली की पिटाई हुई। तब बिल्ली को यह समझ में आया कि घर वाले मारने के पक्ष में नहीं है। फिर उसने अपने आप को समझाया। कुछ दिनों के बाद एक तीसरा तोता आया। बिल्ली ने अब संकल्प कर लिया, दो बार तो पिटाई हो गई है, अब तो नहीं करूंगी वो जो पहले किया था। रात हुई, तोता गाने लगा बीच बीच में। बिल्ली को बड़ा दर्द हुआ उसकी वो आवाज सुनकर। कोई हमसे अच्छा गाता है, कोई हमसे अच्छा बोलता है, कोई हमसे आगे जा रहा है तो पीड़ा होती है, किसी की ज्यादा महिमा हो रही है तो पीड़ा होती है। वैसे बिल्ली बहुत ही धार्मिक, परंतु धर्म भी तो आडंबर बन जाता है कभी कभी। जो दूसरों को दिखा रही थी वो अंदर वो थी नहीं, वो कुछ और थी। रात हुई, उसने उस तोते से कहा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, परंतु जोर जोर से उस पिंजड़े को हिलाया, इतना हिलाया इतना हिलाया कि तोता मर गया। और फिर उसने शास्त्रों में जो लिखा था वो बातें याद की कि किसी को मारना तो हिंसा है, पर जो मरा है उसको खाना तो पाप नहीं है ना। और वो फिर खा गई। ये कहानी मनुष्य चेतना की है। व्यक्ति तर्क देता है कि मैंने जो किया वो सही है, ये पाप नहीं है। ज्ञान को जानता है, धर्म को समझता है, श्रीमत उसे पता है, परंतु आज जो मैंने किया वो शायद कहीं ना कहीं श्रीमत के अनुसार है, वो है नहीं। और अपने आप को छलता है और अपने आप को एक आडंबर में ढाल लेता है और उसी के साथ जीवन चलता है, जहां वो है कुछ और दिखाता कुछ और। अव्यक्त मुरली है 69 की, जिसमें बाबा ने कहा है वो आत्माएं जो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है उन्हें खौफनाक कहा जाता है। वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। पहला विकर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा विकर्म, विकर्म पर विकर्म, पाप पर पाप, श्रीमत का उल्लंघन पहला, दूसरा, तीसरा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और तर्क देने लगता है। स्वयं को ही समझाते रहता है, स्वयं को ही सिखाते रहता है, ये शायद ऐसा है, ये शायद वैसा है, जहां पर श्रीमत माय ओपिनियन योर ओपिनियन नहीं है, श्रीमत द ओपिनियन है, उसको भूल जाता है। और न मालूम ऐसे आत्मा पर कितने दाग लग जाते हैं और एक एक दाग को धोना कितना मुश्किल है। वो दाग है पाप के, वो दाग है विकर्म के, वो दाग है श्रीमत के उल्लंघन के, वो दाग है अपवित्रता के, विकार के, मैली दृष्टि के, देहिक आकर्षण के। स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग, स्वयं का सूक्ष्म निरीक्षण, ये जान लेना कि इस आत्मा में बहुत सारे दाग लग गए हैं। ये जो आत्मा रूपी चुनरी है इसमें विकार के दाग लगे हैं, पाप के दाग लगे हैं, पुराने संस्कारों के दाग लगे हैं, श्रीमत के उल्लंघन के दाग लगे हैं। हर वो दृष्टि जो विकारी थी, हर वो दृष्टि जो मैली थी, हर वो दृष्टि जो पाप की थी, हर वो वृत्ति जो फैली थी और जिसमें देह का आकर्षण था, क्या किया जाए, क्या किया जाए जिसमें ये योगी जीवन निरंतर का जीवन हो जाए। अभी अभी यहां मुरली चली थी बाबा की, ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप इस ब्राह्मण संसार को देखने आए हैं, एक एक ब्राह्मण को देख रहे, एक एक ब्राह्मण आत्मा कितनी विशेष है, कोटों में कोई है, साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान ली, ऐसी आत्मा थी। तुम्हारा विश्व की आत्माओं को चैलेंज है कि तुम योगी जीवन वाले हो, एक दो दिन के, एक दो घंटे के योगी नहीं, सदा के योगी हो। विस्मृति और स्मृति का सारा खेल है। अपनी ही आंतरिक स्थिति के वायुमंडल को देखना है। पुरुषार्थ का कौन सा मौसम चल रहा है चेतना में, उसका निरीक्षण करना है। जागरण की कौन सी अवस्था है, अवेकनिंग की कौन सी अवस्था है, या सोए हुए है या बेहोश है। आज सुबह की साकार मुरली, जब तक तुम अशरीर नहीं बनते माया की कोई ना कोई चोट लगती रहेगी। तो आत्मा पर ये जो दाग लगे हैं, कैसे इनको मिटाए और कैसे आत्मा बेदाग बन जाए, स्वच्छ बन जाए, पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए। ये जो भारीपन है, ये जो बोझ है, ये जो पश्चाताप का भाव है, ये जो अपराध का भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता है। वो अपराध क्या है, कैसा है, वो केवल शायद हमें पता है और कोई नहीं जानता। अपने गुनाहों की तलाफी, अपने पापों का पश्चाताप। सुबह मुरली है आज, जब तक संगम युग है तब तक बाप को सुनाते रहो, कुछ भी छिपाना नहीं है। जो जितना छिपाता है किससे छिपाएगा? दुनिया वालों से तो छिप सकता है, पर इस संसार की अदालत से परे एक दूसरी अदालत है, जमीर की अदालत, इनर कॉन्शियसनेस की अदालत। हमारे अंदर जो अंतस चेतना है उसकी भी एक अदालत है, और उसके भी ऊपर खुदा की अदालत है। वहां तो कुछ भी नहीं छिप सकेगा, यहां से बच जाएंगे। यहां शायद आडंबर चल जाएगा, ऊपर से योगी है परंतु अंदर से भोग की लालसा है। आत्मा विकारों में रस लेती है, विकारों से वैसा वैराग नहीं आया जैसा भगवान चाहता है। विरक्त संपूर्ण वैराग। अभी भी मन वहां जाता है, अभी भी मन देखना चाहता है, आकर्षित होता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे आत्मा में ये जो दाग लगे हैं उनको कैसे स्वच्छ करें। बाप धोबी बनकर आया है, बेहद का धोबी, और मधुबन है बेहद का धोबी घाट। किसी कपड़े को जब दाग लगता है, कम से कम 8 विधियां है जिससे ये दाग निकाला जाता है। इसी तरह आत्मा को जब दाग लगता है उसकी भी 8 विधियां है जिससे ये दाग निकाला जाए। जैसे जैसे हम चर्चा करते जाएंगे, यहीं बैठे बैठे धुलाई चालू कर देनी है। सबसे पहली विधि हैंड वॉशिंग, हाथों से उस दाग को निकालना, धोकर। पहली विधि है हैंड वॉशिंग। ये शॉल है, इसमें दाग लगा है, धोना उसको, खुद ही धोना। अर्थात आत्मा में जब दाग लगे, खुद ही चिंतन करना, खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही सोचना, ये भूल क्यों हुई, ये पाप क्यों हुआ, ऐसी कौन सी वो विवशता थी, ऐसी कौन सी वो मजबूरी थी, वो कौन सी ग्रहचारी थी, वो कौन सा भाव था, आवेश था, वासना थी जिसने ये कराया, और क्यों हुआ ये। और जैसे जैसे आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी गलती भी उसे बड़ी गलती लगने लगेगी। जैसे एक सूफी संत है, उसने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि किसी जमाने में मेरी एक दुकान थी बाजार में, और खबर मिली कि पूरे बाजार को आग लग गई है। मैं भागता हुआ गया, देखा कि सारी दुकानें जल रही है, भागता हुआ अपनी दुकान के पास गया, और एकदम से चैन मिला कि मेरी दुकान नहीं जल रही है। उसने लिखा कि ये मेरे से पाप हो गया, अर्थात मैं इसके लिए खुश हूं कि मेरी दुकान बच गई है और बाकी सब जल गई है। क्या ये पाप नहीं है? क्या खुदा के दरबार में मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा इस भाव के साथ? उसने लिखा, ये पाप मुझसे तब हुआ था, संकल्पों का पाप, थॉट क्राइम्स। जो मैंने ये सोच लिया, अवचेतन में हमारी क्या वृत्तियां है हमें ही पता नहीं है। वो बिल्ली नहीं मारना चाहती है उस तोते को, पर पता नहीं अवचेतन में, अचेतन में, अंतस्तल में, अंत चेतना में कौन से वो भाव है उसे भी पता नहीं कि उसमें ईर्ष्या है, पर कर्म हो रहे हैं, कर्म से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली विधि है खुद ही निरीक्षण करना, खुद ही तर्क करना, खुद ही लॉजिक लगाना, खुद ही मुरली ये कहती है मैं ये करता हूं। तीन चार दिन पहले मुरली में था, ये बाप की आज्ञा है तुम्हें बाप की याद में भोजन करना है, ईट विथ मी। हमने किया, अगर तुम बाप की याद में भोजन नहीं करते तो माया भोजन खा लेगी। श्रीमत स्पष्ट है, प्रश्न था उत्तर था उस दिन मुरली में। ये ज्ञान दिखावे का नहीं है, ये ज्ञान धारणा का है। संडे की सुबह की मुरली नंबरवार क्यों बन जाते हैं? एक पढ़ाई है, एक टीचर है, एक स्कूल है, एक क्लास है, एक कोर्स है, एक स्टडी है, एक ही टाइम पर सबको पढ़ाया जाता है, फिर भी नंबरवार क्यों है? क्योंकि कोई कोई पॉइंट के रूप में धारण करते हैं और कोई कोई किसके रूप में, शक्ति के रूप में धारण करते हैं इस ज्ञान को। आज सेनापति बाप देख रहा है अपनी शक्ति सेनाओं को, कौन कौन से महावीर है और कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से शस्त्र उनके पास है। वो विनाशकारी है, तुम स्थापनाकारी हो। उनके पास भी अस्त्र है, तुम्हारे पास कैसे अस्त्र है? वो दूर रेस फैलाते हैं, तुम अपनी रूहानी याद की शक्ति से किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। संडे की अव्यक्तवाणी, खुद ही सोचना है, खुद ही खुद का निरीक्षण करना है। जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक ग्राफ कैसा है, ऊपर ऊपर जा रहा है या नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, दो कदम आगे चार कदम पीछे। मधुबन में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा अमृत वेला, बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छा चिंतन, सारे दिन भर स्थिति अच्छा। जैसे ही बाहर जाते हैं उधर की दिनचर्या चालू होती है, मधुबन में आते हैं मधुबन की दिनचर्या। ये भी तो दंभ है, किसको हम छल रहे हैं? बाबा ने कहा योगी जीवन अर्थात सदा की जीवन। व्यक्ति का चरित्र वो है जब दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, अकेला कमरे में है, तब वो क्या कर रहा है, जब उसे कोई भी नहीं देख रहा है। दादी जानकी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, हर ब्राह्मण वो है, ट्रैफिक कंट्रोल के समय वो क्या करता है दिन भर, वो उसकी स्थिति है। कितनी बुद्धि एकाग्र है, कितना अंदर से नष्ट मोहा है। बाबा ने कहा सबकी एक साथ टिकट कटेगी, अभी अभी मुरली चली यहीं पर, अचानक एवर रेडी, बहुत काल का पुरुषार्थ। तो सबसे पहली विधि है हैंड वॉशिंग, खुद ही से उस मैल को पहले डायग्नोज करना है कि ये जो दाग है, ये दाग जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो प्रेम नहीं, वो मोह है। ये जो संबंध है जिसे मैं सेवा का लेबल लगाकर घूम रहा हूं वो सेवा नहीं है, कुछ और ही है। यहां तो सबसे नष्ट मोह होना है। इस ब्राह्मण परिवार में भी किसी से मोह नहीं, ऐसी आंतरिक तपस्या करनी है, ऐसी आंतरिक तैयारी हो कि जिसमें हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सारे खेल हो रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, सब अपने और कोई भी अपना नहीं, ऐसी विरक्त अवस्था, नष्ट मोह अवस्था। तो सबसे पहला खुद ही खुद के दाग को देखना, समझना, उसे स्वच्छ करना, निरीक्षण करना। जैसे भागवत में दिखाया है राजा परीक्षित पाप हो जाता है, समझ में आ जाता है सात ही दिन है, सात दिन बाद मरने वाला है, सात दिन तक किस एकाग्रता से वो भागवत सुनता है। यदि हमें आज पता चल जाए कि सात दिन के बाद हम मरने वाले हैं तो क्या अवस्था होगी, कैसा एक एक दिन हम बिताएंगे।
क्या टाइम वेस्ट करेंगे? आज का ही दिन देख लो, सुबह अमृत वेले से लेकर आज तक अभी तक क्या क्या किया? अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी कि केवल सुनी? चिंतन कितना किया उसके ऊपर, एक एक लाइन में कितनी गहरी गहरी बातें थी। मन का स्वभाव है नीचे आना है, उसे काम देना है, बिजी रखना है। कल की मुरली थी, बिजी रहो तो सेफ रहेंगे, नहीं तो सेफ नहीं है। निरंतर ज्ञान के चिंतन से स्वयं को ऊपर रखना है, शरीर से ऊपर, यहां की व्यर्थ बातों से ऊपर। दूसरी विधि ब्रशिंग, ब्रश से दाग को साफ किया जाता है। पहला हाथ से, केवल दाग लगा है शॉल पर, हाथ से साफ किया पानी लगा के या साबुन लगाकर। दूसरी ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ब्रश से साफ करना अर्थात आत्मदंड, अपने आप को ही सजा देनी है। आज अमृत वेला लेट हुआ, मिस हुआ, साधारण हुआ, व्यर्थ चला अमृत वेला, अपने आप को आज सजा देना है। वो सजा नहीं देना कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा और भोजन नहीं करूंगा, वो वाली सजा नहीं, वो सजा का उल्टा परिणाम है। सजा ये देना कि आज मैं मुरली 3 बार पढ़ूंगा, केवल पढ़ूंगा नहीं, पॉइंट्स निकालूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। संडे की मुरली, एक एक पॉइंट में शक्ति क्या है, एक एक पॉइंट में कौन सी शक्ति है, एक एक पॉइंट को जीवन में कैसे धारण करूं, इसका चिंतन करूंगा। मुरली केवल भक्ति मार्ग नहीं है, आए बैठे पॉइंट्स लिखी और चल दिए, वो तो कनरस हुआ। तो धारणा करनी है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त, ज्ञान में अनुभवी मूर्त अर्थात ज्ञान अर्थात लाइट और माइट, योग में अनुभवी मूर्त अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, धारणा में अनुभवी मूर्त ऑटोमेटिक बन जाएंगे जब पहली 2 बातें होगी, और सेवा में अनुभवी मूर्त अर्थात किसी के प्रति भी सूक्ष्म घृणा का भाव नहीं, ये तो ऐसा ही है, इसको क्या समझाना, टाइम वेस्ट है। प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है, ये एक एक आत्मा यहां महान है, हरेक के प्रति शुभ भावना। कितनी ऊंची बातें कही है बाबा ने अभी अभी मुरली में, स्वयं को दंडित करना है। टाइम वेस्ट किया, आधा घंटा 1 घंटा फोन पे व्यर्थ बातें चल रही है, बैठना है और बाबा से बात करनी है, दंड है ये, अपने आप को दंड देना है, मुझे 2 घंटा तक बाबा से बात करनी है, ये है दंड। 3 बार मुरली पढ़नी है, 4 बार मुरली पढ़नी है, केवल पढ़नी नहीं, पॉइंट्स निकालने हैं, ये है दंड। योग करना है, अपने मन को जबरदस्ती करानी है कभी, क्योंकि मन मानता नहीं है, उसे तो आराम चाहिए। कई बार जबरदस्ती से करो तो अपने आप सब कुछ होगा। विदेश में एक लेखक था मार्क ट्वेन, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि हम लोग दोस्त मिलके सब घूमने गए जब जवान थे, एक्सकर्शन, थक गए घूम घूम के, फिर के घर जाना था, पर बहुत बड़ी दीवार आ गई बीच में, दीवार को कौन लांघता, सब मित्र बैठ गए, कहने लगे हम नहीं करेंगे। मार्क ट्वेन ने लिखा सबकी टोपियां मुझे दे दो, सबकी टोपियां ली और टोपी दीवार के उस पार फेंक दी। अब कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा क्योंकि टोपियां उधर है। मन को कई बार जबरदस्ती करनी पड़ती, दंड देना है उसको, ज्ञान योग का दंड देना है उसको, सेवा का दंड देना है उसको। जो सेवा आज तक की नहीं, ऐसी कौन सी वो सेवा है, लिस्ट निकालनी है, ऐसी कौन सी यज्ञ की सेवा है जो मैंने आज तक नहीं की है। वो जाकर करनी है, हॉस्पिटल में जाके किसी मरीज की सेवा, किचन में जाके कोई ऐसी सेवा जो आज तक नहीं की है। ये उंगलियां बहुत गुनेगार है, कितने क्लिक किए और कितने पाप किए पता नहीं इसमें, इनको भी पापों से मुक्त करना है। कैसे? मुरली लिखकर। कैसे? चिंतन लिखकर। कैसे? भगवान के महावाक्य लिखकर। इन उंगलियों को भी पावन बनाना है, बहुत पाप किए। तो दूसरी विधि है ब्रशिंग। तीसरी विधि दाग को निकालने की, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग अर्थात बिना पानी लगाए कोई दूसरे वस्तु से, नोकीले वस्तु से उस दाग को निकाला जाता है। दाग को निकालने की यह भी एक विधि है। कपड़ों के ऊपर जो दाग लगता है, कोई दूसरा एक हार्ड सा मटेरियल लेके उसको घिसते हैं। स्क्रैपिंग, स्क्रैप करना, खुरेदना उसको, अर्थात पश्चाताप करना। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज अराउंड द कॉर्नर। बाइबल में लिखा है, हे आत्माओं पश्चाताप करो, जो कुछ किया है, जो कुछ पाप हुए सुबह की मुरली में, जो कुछ आज तक किया है बाप को सुना दो। बाप है अविनाशी वैद्य, माफ कर देगा। इस ड्रामा में माफी होती नहीं वो दूसरी बात है, परंतु बोझ हल्का हो जाएगा, फिर वो पाप नहीं होगा। विदेश के एक पादरी की कहानी है, जो कि चर्च में था और बहुत अच्छी सेवा करता था और ब्रह्मचारी था और योगी था, पर पता नहीं बीच में क्या हो गया कि अंदर खालीपन लगने लगा और किसी से प्यार हुआ। चर्च का वो समर्पित जीवन छोड़ दिया, शादी कर ली, भाग गए। और फिर तो जीवन ही बदल गया, संसार, प्रपंच, व्यवहार, कारोबार, धंधा दौरी सब चालू हो गया। यहां जब वो पादरी था तो प्रभु प्रेम में गीत लिखता था, खो जाता था उसकी यादों में, कैसा ऊंचा उदात्त जीवन था। और आज बस घर की चिंता है, दिखाया है एक बार जा रहा है एक टांगे में बैठकर, उसके बाजू में एक महिला आके बैठती है जो कि एक गीत पढ़ने लगती है, और उसे पता चलता है ये गीत तो मेरा ही लिखा हुआ है। तब जब मैं भगवान के निकट था, उस गीत में था कि वो प्रभु का प्रेम, वो प्रभु की कृपा जो कि निरंतर बह रही है झरनों की तरह, जैसे ही वो सुनता है वो रोने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, कैसा वो जीवन था, कैसा वो श्रेष्ठ जीवन था, और कहा ये नर्क में आ गिरा हूं। वो महिला पूछती है, आप क्यों रोते हो? वो कहता है, ये गीत मेरा है। कहां है उसकी कृपा, द नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी। वो महिला कहती है, वो खोया नहीं है प्रेम, उसकी कृपा खोई नहीं है, अभी इस समय पेरिस की स्ट्रीट में उसकी कृपा बह रही है। और अचानक वो जैसे ही सुनता है वापस से आत्मा जागृत हो जाती है, एकदम से पता चलता है ये क्या कर दिया मैंने, कहां था और कहां पहुंच गया, और फिर से जीवन परिवर्तन। सुबह की मुरली में है ये शिक्षा है, यहां कृपा दया आशीर्वाद तुम स्वयं पर करो, बाप नहीं करेगा। सेल्फ कंपैशन, पश्चाताप, देखना है ब्राह्मण बनने के बाद कौन से विकर्म किए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम्हें 63 जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप किए, जो झूठ बोला है, जो श्रीमत को तोड़ी है, जो ब्रह्मचर्य को तोड़ा है, जो चोरी की है चुपके से, चौथी विधि ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग अर्थात जिसमें व्हाइटनर का प्रयोग किया जाता है और उस स्टेन रिमूवर से उस दाग को निकाला जाता है। इस विधि से निकाला जाता है कि ताकि वो स्टेन, वो दाग कहीं और फैले ना कपड़े में, वहां पर ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग अर्थात दृढ़ संकल्प रूपी प्रतिज्ञा कि जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो गलती एक बार की वो पुनः न करना, इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। फोर्थ मेथड ब्लॉटिंग, एक ऐसा संकल्प करना, और मधुबन जैसी कोई भूमि नहीं है ये संकल्प करने की, जहां हम अभी बैठे हैं इसी हॉल में, यहीं पर बैठे बैठे ही संकल्प कर लेना कि वो जो संस्कार, वो जो आदत, वो जो एडिक्शन, वो जो विकार, वो जो पाप, न चाहते हुए जानते हुए भी हो रहा है, अभी इसी ब्राह्मणों की सभा में, इसी मधुबन की पावन भूमि में, मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूं कि उसे यहीं पर अभी छोड़ के ही जाऊंगा। ऐसा संकल्प यहीं बैठे बैठे कर लेना, यहां किसी को देखने दिखाने की कोई बात नहीं। सारी आंतरिक प्रक्रिया है। तो दाग फैलेना अर्थात जो गलती हुई है कल वो और ना बढ़े, प्लॉटिंग, वो स्टेन, वो दाग वहीं खत्म हो जाए। संकल्प, पांचवी विधि स्पंजिंग। कुछ कुछ दाग को कैसे निकाला जाता है? स्पंज करके निकाला जाता है। स्पंज लिया जाता है, उससे उस दाग को निकाल देते हैं और वो निकल भी जाता है। स्पंजिंग अर्थात समान, पाप तो हुआ है, दाग तो लगा है, चुंदरी तो मैली हुई है, अब क्या करें? अब नए संकल्प रचने हैं, अच्छे श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं। मुरली चली थी शांतिवन में, यहां पर जहां स्वमान है वहां पर देहभान आ नहीं सकता, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। स्वमान के स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वमान की माला बनाओ और स्वमान में लवलीन हो जाओ। स्वमान इज हायर कॉन्शियसनेस, जहां स्वमान है माया नहीं खींचेगी। श्रेष्ठ स्वमान अपने ही निर्माण करने हैं, मैं इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा हूं, शक्तिशाली संकल्प। मैं इस सृष्टि का केंद्र हूं, ये सारी सृष्टि के बीच में मैं आत्मा हूं और मुझसे पवित्रता की किरणें एक एक आत्मा तक जा रही है, एक एक आत्मा को मैं पवित्र बना रहा हूं। मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पावन बनाना है, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मुझे इस संसार के एक एक कण को पावन बनाना है, एक एक पार्टिकल को पवित्र बनाना है। श्रेष्ठ संकल्प है ये, ऐसे ऊंचे ऊंचे संकल्प में स्थित होते जाना है। महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, और केवल रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको उतारना है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। भगवान कह रहा है ये तुम हो, ये शूद्र कर्म मुझसे नहीं हो सकते, ये भ्रष्ट कर्म मुझसे नहीं हो सकते, अब तक कर लिया सो कर लिया, परंतु अब नहीं, स्टॉप, स्टैच्यू। श्रेष्ठ समान, और समान कहां से निकालेंगे? मुरलियों से, रोज की मुरली से। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, आज की मुरली से एक दिन भी स्टडी मिस नहीं करनी है तुमको, नहीं तो संशय जो अंदर है वो निकलेंगे नहीं। और जो बार बार क्लास मिस करते हैं, एब्सेंटिज्म, धीरे धीरे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होने लगता है ऐसे स्टूडेंट्स का। स्पंजिंग, उसके बाद में अगली विधि है फ्लशिंग। कुछ कुछ दाग को केवल पानी के पास रख देना पड़ता है, पानी ऊपर से बहता रहा, नल खोल दो, वो दाग अपने आप निकल जाएगा। वो फ्लशिंग अर्थात परमात्म प्रेम, भगवान के प्यार में इतना खुद को डुबो दो, इतना खुद को डुबो दो सारे पाप सारे विकर्म अपने आप धुल जाएंगे, निकल जाएंगे, ये जो दाग है सारे। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पापा भगवान कितना बड़ा है? पिताजी कहते हैं, वो देखो एरोप्लेन जो जा रहा है ना, उतना बड़ा। बच्चा कहता है, इतना छोटा? एरोप्लेन तो बहुत छोटा दिख रहा है। पिताजी उस बच्चे को लेके जाके एयरपोर्ट लेके जाते हैं और कहते हैं, ये देखो एरोप्लेन। वो कहता है, हाँ ये तो बहुत बड़ा है। पिताजी कहते हैं, वैसे ही भगवान के साथ है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, तुम कितने दूर हो उससे। जितने उससे नजदीक है उतना वो बहुत बड़ा है, जितना उससे दूर है वो बहुत छोटा है। हम प्रभु के निकट कैसे पहुंचे? उसके जितने जो समीप है अपने आप, किसी को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। इसको पूछो, उसको पूछो, ये कैसे करना, पुरुषार्थ कैसे करना, अमृत वेला कैसे करना, जीवन में ये समस्या है, किसी को कुछ पूछने की, सभी उत्तरों का उत्तर वो परमात्मा है, उत्तरों का वो सागर है, समाधान का वो सागर है, सारे उत्तर उसके पास है, केवल हम उससे दूर है। ठंड का मौसम है, आग लगाई है किसी ने, पर कोई दूर बैठा है और वहां बैठकर कंप्लेन करता है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड है तो किसने कहा दूर बैठो, समीप आ जाओ, आतिशे इश्क जल रही है। फ्लशिंग अर्थात उस दाग को, उस दाग के बारे में सोचो ही नहीं, रख दो उस पानी में, पानी बहेगा ऊपर से। इतना प्रभु प्रेम में डुबा दो, इतना उसकी यादों में डुबा दो। मुरलियों में आता है, ऐसे बाप को याद करो कि तुम्हारी आंखों से क्या हो जाए, प्रेम के आंसू आ जाए। याद करो लास्ट कब आए थे आंसू, कब आए थे? पता नहीं कब आए थे, वो तब आते थे जब ज्ञान में आए थे, शुरू शुरू में, बाद में सूख गए। संडे की अव्यक्त वाणी सुबह की, ड्रामा की पॉइंट्स को याद करते, साथ में रोते भी है। इधर कहते ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में बदली नहीं हो सकती, ड्रामा भगवान को पसंद है, दूसरी तरफ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। ज्ञान को पॉइंट के रूप में धारण किया, शक्ति के रूप में धारण नहीं किया है। प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम, ऐसे ऐसे उसके गीत सुनने हैं जो प्रभु प्रेम में डुबो दे। ऐसे ऐसी आत्माओं के अनुभव सुनने हैं, यहाँ पर लिटरेचर में आपको मिलेंगी किताब अनुभव की, जिसमें बहुत सारे आत्माओं के बाबा के साथ के अनुभव, दादियों के अनुभव है। बिजी रखना है अपने आप को पढ़ाई में, कैसे बाबा ने मदद की, और उस प्रेम का अनुभव, उस प्रेम में स्वयं को डुबो देना है अकंठ। अगली विधि ड्राई क्लीनिंग, कुछ कुछ दाग को क्या करना पड़ता है, ड्राई क्लीनिंग में डालनी पड़ती है। बहुत जो डेलिकेट है, फाइबर और इस तरह के उलन, ड्राई क्लीनिंग अर्थात मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, अपने आप को हटा दो इस भीड़ से, इस आवाज से कुछ समय के लिए बीच बीच में। बाबा मुरलियों में उदाहरण देते, जैसे वो भक्त किसी कोठरी में जाकर बैठ जाते, वैसे तुम भी बीच बीच में एकांत में चले जाओ, मौन में चले जाओ, खुद ही अंदर अपने अंदर गुफा में बैठ जाओ और वहां बैठकर चिंतन करना है। अपने आप वो जो दाग है, वो जो विकर्म है, वो जो पाप होने का एहसास है, वो जो अपराध भाव है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, पुरुषार्थ नहीं करने देता है। सबसे बड़ी बाधा है कि मुझसे ये पाप हो गया है। रोज मुरलियों में आता है, काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, पर हम जो कर रहे हैं वो तो निरंतर ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हो रहा है। आंखें नहीं देखना चाहती थी, क्या देख रही है? ये जो संबंध बना के रखा है किसी के साथ, जिसको हम भाई बहन का संबंध कहते हैं, परंतु उस भाई बहन के संबंध में भी दाल नहीं गल रही है। अपराध भाव, अपराध भाव से चेतना मुक्त हो, हल्कापन हो, और प्यूरिटी जैसा हल्कापन और इस संसार में किसी और चीज से नहीं आ सकता। अपवित्र जैसा भारीपन और कोई भी नहीं। कल की मुरली में था, संसार के लोग तो उस काम को बहुत बड़ी पूंजी समझते हैं, हमारे लिए जहर है, पॉइजन है, इष्टा है, वमन है। ये सात विधिया की पर दाग नहीं निकला, आप सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दो। आठवीं विधि है, क्या करो, वॉशिंग मशीन में डाल दो। वॉशिंग मशीन में डाल देना अर्थात समर्पण, बाबा के सामने क्या कर देना, समर्पण। सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया, फिर भी निकलता नहीं, इतना गहरा है, दागा चुनरी में दाग। कबीर कहे, साहिब अब तू अपना ले, अब तू ही अपना ले, स्वयं को समर्पित कर देना है उसके सामने, नतमस्तक। बल्ख का एक बहुत बड़ा राजा था इब्राहिम। ये उस समय की बातें हैं जब गुलामों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, खरीद फरोख्त होती थी। वो राजा अपने राज्य से जा रहा था, एक बड़ा ही तगड़ा व्यक्ति उसे दिखा, उसको लगा कि इस गुलाम को मैं खरीद लेता हूं। उसको खरीदा, घर ले आया। उस गुलाम से वो राजा पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो गुलाम कहते हैं, आप जिस नाम से पुकारो। राजा पूछता है, तुम्हें क्या क्या पसंद है? वो कहता है, जो आपकी पसंद। गुलाम है। इब्राहिम पूछता है, तुम क्या करोगे? कहते, जो आप कराओ। वो कहता है, तुम क्या क्या कर सकते हो? जो आप कराओ, जो आप कहो। जैसे ही उसकी उस इन बातों को सुनता है इब्राहिम, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। कहते, तुम मेरे उस्ताद, तुमने मुझे सिखाया उस खुदा के सामने कैसे समर्पित करना है अपने आप को। इसमें मेरी अब कोई इच्छा नहीं, जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो तू कहा कराए, जहां तू रखे, जो तू खिलाए, जिस कमरे में रखे, जिस सेवा केंद्र में रखे, जिस ऑफिस में रखे, जिस घर में रखे, राजी तेरी रजा में। मुझे ऐतराज क्या है, अब किसी बात का ऐतराज नहीं है, जहां तू रख दे बस वही सब कुछ है, जो तेरी इच्छा है। दिखाया है महाभारत में, कुंती बहुत दुखी है महाभारत के युद्ध के बाद, कृष्ण के पास आकर कहती है, क्या फायदा हुआ इस युद्ध का, सब मर गए, आखिर जो मरे वो भी तो अपने थे, केवल ये पांच जिंदा रहे, बस बाकी तो सब मर गए, क्या फायदा हुआ उस युद्ध का। कृष्ण उसकी पीड़ा देखकर कहता है, अगर तुम कहो तो अभी के अभी सबको जिंदा कर देता हूं। वो कहती है, इसका मतलब तुम में अगर इतनी शक्ति है तो तुम इसे रोक भी सकते थे, अर्थात ये सब तेरी ही इच्छा से हुआ है, इसलिए अभी कुछ मत करो, राजी तेरी रजा में, thy will shall be done, कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि हर आत्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जन जन के हिसाब चुकत हो रहे हैं। इसलिए समर्पण, संपूर्ण समर्पण, जहां तूने रखा है बस मैं वहीं खुश हूं, जो सेवा तूने दी है उसमें मैं खुश हूं, जिन लोगों के साथ तूने रखा है उनके साथ मैं खुश हूं, मेरी अब अपनी कोई इच्छा नहीं, तेरी इच्छा और मेरी इच्छा एक है। तो ऐसी ये 8 विधियां है क्या करने की, दाग को धोने की। बाप बेहद का धोबी है, हम भी मास्टर धोबी है, और अभी तो बेहद के धोबी घाट में है, यहां जितने एक विधि से नहीं होता तो दूसरी विधि, दूसरी से नहीं होता तो तीसरी, पर उस दाग को धोना है, आत्मा को स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। सबसे पहली बताई क्या करना है, पहली विधि हैंड वॉशिंग, दाग को धोना है खुद ही अपने हाथ से। कोई दूसरा आएगा, मधुबन में जाएंगे, किसी का क्लास सुनेंगे, कोई भट्टी होगी, तब करेंगे नहीं, आज अभी इसी वक्त। किसी के लिए वेट नहीं करना है, अपनी भट्टी खुद ही निश्चित करना है, कल मेरी भट्टी है डिसाइड करना है, कल मुझे कितने बजे उठना है और सारे दिन भर ये पुरुषार्थ करना है, खुद ही खुद का आयोजन करना है, सेल्फ मैनेजमेंट, पुरुषार्थ का मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। दूसरी विधि बताई क्या करना है, ब्रश, ब्रश से घिसना है उसको, निकलता नहीं है दाग, बहुत गहरा है, रेशे रेशे में समाया हुआ है, मन की अवचेतन की परतों में है, दंड देना है खुद को, ज्ञान और योग के दंड, सेवा का दंड देना है कि आज मुझे 6 घंटा सेवा करनी है तब तक नहीं सोऊंगा, 8 घंटा सेवा करनी है तब तक नहीं सोऊंगा, थका दूंगा खुद को, परंतु पाप हुआ है, अमृत वेला मिस किया है, मुरली का चिंतन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ करना है मुझे। तीसरा बताया स्क्रैपिंग, पश्चाताप। चौथा बताया ब्लॉटिंग अर्थात संकल्प। रोज अमृत वेला एक शक्तिशाली संकल्प जरूर करना है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, आज सारे दिन भर जो भोजन करूंगा 3 बार एक शब्द मुख से नहीं निकलेगा, मौन होगा पूरा, पांचवी विधि स्पंजिंग समान का अभ्यास, छठवी विधि फ्लशिंग, प्रभु प्रेम में आत्मा को ऐसे डुबा दूंगा, ऐसे सराबोर तरोताजा उसको कर दूंगा, उस प्रेम का झरना बह रहा है। उसके बाद में ड्राई क्लीनिंग, व्यस्त दिनचर्या में मौन को चुराना है, आवाज की दुनिया से एकांत को चुराना है, बाह्य मुक्ता की दुनिया में एक अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना है, बीच बीच में चाहे कोई कितना भी बिजी हो ये नहीं कह सकता मेरे पास समय नहीं है, निकालना है समय। और लास्ट, सब कुछ कर लिया, दाग तो वैसे के वैसा, क्या करना है अब, पर मशीन में वैसे नहीं डालना होता है, पहले कुछ करना पड़ता है, डिटर्जेंट वगैरह, पानी वगैरह सौंप दो उसको। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। एक और मुरली है जो याद आ रही है, 9th जनवरी 1980 बाबा ने कहा है 5 प्रकार के ड्रेस की मुरली है, वो अलौकिक ड्रेस। पहला ड्रेस है मिट्टी वाला ड्रेस अर्थात देहभान वाला ड्रेस, इसको नहीं पहनना है। दूसरा ड्रेस है बदबू वाला ड्रेस, लगाव वाला, देहभान का लगाव है, वो नहीं पहनना है। तीसरा ड्रेस है चमड़ी वाला ड्रेस, कुछ कुछ बच्चे चमड़ी वाला ड्रेस पहनते हैं, चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी की तरफ आकर्षित होते हैं। चौथा है धब्बे वाला ड्रेस, एक दूसरों के अवगुणों को धारण करते हैं। और पांचवा सबसे खतरनाक ड्रेस है रक्त से रंजित ड्रेस, खून के धब्बे है अर्थात बार बार विकर्म होने हो रहे हैं। ये पांचों ही ड्रेस का त्याग करना है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ बाजू में, मन का संपूर्ण समर्पण भाव। रेड लाइट, संपूर्ण मौन। शरीर की सारी हलचल माफ। आंखें स्थिर, मन एकाग्र। संसार का सभी चिंता, संसार की सभी चिंताएं, सारे विचार संसार में ही छोड़कर मैं आत्मा अपने आप को देख रही। तख्त पर विराजमान चमकता सितारा, लौकिक मौन, सारा वायुमंडल देह के भव्य भाल पर विराजमान चैतन्य आत्मा से संपूर्ण शरीर पवित्रता की किरणें फैल रही। अंग अंग एक एक कर्मेंद्र शांत हो रहे, सारा शरीर जैसे ऊर्जा से भर गया है, दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश। मैं आत्मा शांत वायुमंडल में शांति की तरंग चहुओर पवित्रता के प्रकंपन पवित्रता का एक समंदर आत्मा मानो डूब रही। आवास से परे अवस्था शरीर के भान से परे एक अव्यक्त आनंद तक पर चमकता मणि देह की विस्मृति उड़ रही आकाश संसार से परे तत्वों से बाहर पूर्ण मौन स्वानंद में डूबी बादलों को चीर अंतरिक्ष से पार सूक्ष्म वतन सम्मुख अव्यक्त बापदादा बाबा के नूरानी नैन मैं आत्मा बाबा से शक्तिशाली दृष्टि ले बाबा जब से ये ब्राह्मण चल ऐसी कोई बात नहीं मेरे जीवन जो तुम नहीं जानते बाबा ऐसा कुछ जो शायद मैंने कभी आपसे छिपाया फिर भी मुझे दिखाई दे रहे जीवन के वो सारे दृश्य ब्राह्मण जीवन में हुए वो सारे विकर्म आत्मा की चुनरी को जो दाग लगे सब दिख रहे मैं आत्मा आपके सामने आज उन सब को स्वीकार कर सच्चे दिल से मैं आत्मा आज आपके सम्मुख खड़ी रहम का सागर, करुणा का सागर, बाबा को वो सब बताएं तो शायद आज तक किसी को नहीं बताया। बाप को सच्चे बच्चे बहुत पसंद, मौन वार्तालाप अनुभव कर रहे, बाबा सब सुन रहे, अब उसने अपना वरदान ही हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मन हल्का हो गया, आत्मा जैसे बाप से कह रही है, बाबा मैं थक गई, और मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं कि बाबा की गोद में उसने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा है। वो जो जानी जानन है, वो जो ज्ञान का सागर है, वो जो मेरे केवल इस जन्म को नहीं मेरे सारे जन्मों को जानता, वो मेरी महानता को पहचानता, मेरी सूक्ष्मति सूक्ष्म कमी भी जिसे पता है, हाथ मस्तक पर जैसे सारी थकान मिट गई, मन प्रभु प्रेम से भर रहा, समान फिर जागृत हो रहे, वो समर्पण फिर आ रहा, बाबा तुम ही आधार हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही मन के एक से सारे संबंध, एक से प्यार, हसे की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, तेरी ही सेवा, एक तेरा ही ज्ञान, तुझ में संसार, एक तू ही, प्रभु प्रेम में आत्मा डूबती जा रही। सर्वस्व वही तन का समर्पण, मन का समर्पण, बुद्धि, बोल, धन का, संस्कारों का, कर्म का, कर्म के परिणाम का, मेरा हर संबंध, हर संपर्क, सब कुछ समर्पण। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित धीरे धीरे नीचे उतरती पहुंच गई उस स्थान पर जहां मेरा वर्तमान समय घर है, सेवा केंद्र। मैं फरिश्ता अपने घर में घूम रहा, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें निकल, ये घर शुद्ध हो रहा है, ये सेवा केंद्र निर्विघ्न हो रहा है। मैं फरिश्ता अपने ऑफिस सारा विरोध, सारी कटुता, संस्कार, उनका संघर्ष समाप्त। मैं फरिश्ता हूं, देख रहा हूं अपनी दिनचर्या, साक्षी होकर दिखाई दे रहा है सब कुछ, कितने बजे उठता हूं, कैसे अमृत वेला करता, कैसे मुरली सुनता हूं, विशाल स्क्रीन पर अपनी दिनचर्या मुझे दिखाई दे रही, कैसे भोजन करता, कैसे कोर्स कराता, कैसे मुरली सुनता हूं सुनाता हूं, कैसे लोगों से मिलता, दृष्टि कैसी है, वृत्ति कैसी, सुबह शाम के योग के समय क्या करता हूं, मन में स्वाभाविक कौन से संकल्प आते हैं। फरिश्ता दूर बैठे अपने आप को क्या मेरी ये दिनचर्या योग युक्त, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान लाइट और माइट बना है, क्या कर्मेंद्रिय जीत, क्या संपूर्ण धारणाएं मेरे दिनचर्या में है, भाव से सेवा करता, कहीं सेवा का ही अहंकार तो नहीं, मैं फरिश्ता देख रहा हूं स्वयं, सूक्ष्म निरीक्षण, सबके प्रति शुभ भावनाएं, मन में कहीं सूक्ष्म घृणा तो नहीं, व्यस्त दिनचर्या में मौन कितना समय, या सारा दिन केवल शब्दों में, बातों में, वाचा खोया रहता, पढ़ाई से मेरा कितना प्यार, स्वयं से बातें, स्वयं का निरीक्षण, स्वयं की जांच, बाबा क्या ये ब्राह्मण जीवन वैसे ही जी रहा हूं जैसे तुम चाहते, गलत तो नहीं हो रहा, फरिश्ता धीरे धीरे उड़कर आकाश में, सारे विश्व का ग्लोब मेरे सम्मुख, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे अंग अंग से निकलकर पांचों तत्वों को जा रहे, संसार की एक एक आत्मा टच हो, पवित्रता की दिव्य लहरें, पवित्रता का दिव्य आवाज संसार में गूंज रहा है, मैं परम पवित्र फरिश्ता, पवित्र संकल्प, पवित्र बोल, पवित्र कर्म, पवित्र चलन, पवित्र संकल्प, संबंध और संपर्क, रोम रोम में पवित्रता समाई है, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, भावनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, मेरा खाना, स्पर्श, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ पवित्र, संपूर्ण पवित्रता की अवस्था। मैं फरिश्ता नीचे उतरता, धीरे धीरे वापस शरीर में प्रवेश, और मधुबन के इस पवित्र प्रांगण में, ब्राह्मणों की इस अलौकिक सभा में दृढ़ संकल्प करता हूं, बाबा आज से वही करूंगा जो तुम चाहते। अपने आप को जल्द से जल्द संपूर्ण बनाओ। इसी संकल्प से मधुबन में लिए इस संकल्प से अब मुझे वापस उस संसार में जाना है, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति लेकर। शांति।